एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने पिछले कुछ समय में पढ़ने वालों के दिलो दिमाग पर मतलब गहरी छाप छोड़ी है, अब्राहिम वर्गीज की लिखी द कोवेनेंट ऑफ वाटर।
ये एक लंबी काफी फैली हुई कहानी है, जैसे केरल की अपनी नदियां होती है ना।
हाँ बिल्कुल, और अब्राहिम वर्गीज खुद भी मतलब कमाल के शख्स हैं। सिर्फ लेखक नहीं, वो तो जाने माने डॉक्टर भी हैं।
अच्छा
जी हाँ, इथियोपिया में भारतीय माँ बाप के घर पैदा हुए, अलग अलग संस्कृतियों में पले बड़े, और ये चीज, ये अनुभव उनके लेखन में साफ झलकता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ हैं, और मेडिकल दुनिया की उनकी जो समझ है ना, वो कहानियों को एक अलग ही सच्चाई, एक गहराई देती है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। उनकी पहली किताब थी कटिंग फॉर स्टोन, उसने तो काफी धूम मचा दी थी, है ना?
बिल्कुल। और वर्गिस का मानना है कि कहानियां कहना भी मतलब एक तरह का मरहम लगाना है, एक इलाज है।
वाह, कहानी कहना बतौर इलाज, दिलचस्प सोच है।
हाँ, और द कोवेनेंट ऑफ वाटर जो 2023 में आई, उसे तो कई लोग उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन रचना, उनका मैग्नम ओपस कह रहे हैं।
हाँ, ओपरा विन्फ्रे ने भी इसे अपने बुक क्लब के लिए चुना था और दुनिया भर में खूब पढ़ी गई।
जी
तो आज हमारा इरादा यही है कि इस बड़ी महाकाव्यात्मक कहानी के ताने बाने को थोड़ा खोलें, इसके किरदारों के सफर को समझें।
हाँ, और उन गहरे सवालों को भी टटोले जो ये किताब उठाती है।
बिल्कुल, तो कहां से शुरू करें?
तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सोचिए, साल है 1900, जगह है केरल का त्रावणकोर इलाका।
केरल, आंखों के सामने हरियाली आ जाती है।
बिल्कुल, चारों तरफ पानी ही पानी, हरियाली है, और यहाँ सेंट थॉमस ईसाई समुदाय की एक पुरानी बस्ती है। और फिर किताब का नाम ही देखिए, जल का करार, द कवेनेंट ऑफ वाटर।
हाँ, ये नाम ही सोचने पर मजबूर करता है। कैसा करार, मतलब पानी से कैसा समझौता? पानी तो जीवन है।
लेकिन शायद मौत भी, यही तो रहस्य है। ये कैसा करार है? पानी जो जीवन देता है, उसी पानी से जुड़ा कोई गहरा, शायद भयानक समझौता।
यहीं से कहानी की गांठ खुलनी शुरू होती है लगता है।
हाँ, ये कहानी है परम्बिल परिवार की, एक नहीं दो नहीं, पूरी तीन पीढ़ियों की दास्तान।
तीन पीढ़ियां तो काफी लंबा कैनवस है।
बहुत लंबा। और इस परिवार पर एक अजीब सा साया है, एक रहस्यमयी अवस्था का, जिसे वो लोग द कंडीशन कहते हैं।
द कंडीशन, ये क्या बला है?
ये एक दुखद सिलसिला है, मतलब एक पैटर्न जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है। परिवार में कोई ना कोई सदस्य पानी में डूबकर मर जाता है।
डूबकर? लेकिन केरल में तो पानी आम बात है, तैरना भी लोग जानते होंगे।
हाँ, यही तो अजीब बात है, अक्सर मौतें शांत पानी में होती हैं, ऐसी परिस्थितियों में जिनका कोई मतलब नहीं बनता, चाहे तैरना आता हो या ना आता हो।
बाप रे, ये तो किसी श्राप जैसा लगता है ना।
बिल्कुल, एक अनजाना डल जो पानी से जोड़े भी रखता है और उससे दूर भी भगाता है, क्योंकि जीने के लिए पानी तो जरूरी है, उससे बचकर कहाँ जाएंगे।
सही कहा। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है इस परिवार के साथ?
कहानी की शुरुआत भी इसी पानी के किनारे होती है। 1900 में एक 12 साल की बच्ची है, जिसका नाम हम बाद में बिग अम्माची के तौर पर जानेंगे।
सिर्फ 12 साल की?
हाँ, सिर्फ 12 साल की। उसकी शादी एक 40 साल के विधुर बिग अप्पा चेन से कर दी जाती है, और उसे अपना घर छोड़कर परमबील एस्टेट आना पड़ता है, जो कि नहरों और नदियों से घिरा हुआ है। जरा सोचिए उस बच्ची की हालत, एक नई बिल्कुल अनजान जगह,
और चारों तरफ पानी का वो माहौल जो जीवन भी देता है और खतरा भी है।
बिल्कुल, पानी का ये दोहरा रूप। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जो पूरी कहानी में गूंजता रहता है, ये जो हो रहा है, ये जो डूबने का सिलसिला, ये किस्मत है, कोई पुराना श्राप,
या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह छुपी है?
हाँ, क्या इसे सिर्फ आस्था, सिर्फ विश्वास से समझा जा सकता है, या विज्ञान इसका कोई राज खुल सकता है? ये सवाल कहानी के बिल्कुल केंद्र में है।
और इस सवाल का जवाब ढूंढने का सफर ही कहानी है, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। और इस सफर के राही हैं इसके किरदार।
हाँ, किरदारों के बिना तो कहानी कुछ भी नहीं, कहानी की आत्मा बसती है इन किरदारों में। और सबसे पहले जाहिर है बिग अम्माची।
बिग अम्माची है, जो 12 साल की उम्र में आई थी।
वही, क्या कमाल का किरदार रचा है वर्गीज ने। वो 12 साल की डरी हुई दुल्हन से शुरू होकर परमबिल परिवार की मतलब एक अटूट नींव बन जाती हैं।
उनमें गजब का धीरज है, समझ है, और वो वाली समझ जो किताबों से नहीं आती बल्कि जिंदगी को बहुत गौर से देखने से आती है।
अच्छा, उनकी ईसाई आस्था बहुत गहरी है लेकिन वो जमीन से जुड़ी हुई है, बहुत प्रैक्टिकल है। सोचिए पहले अपने सौतेले बेटे जोजो को पानी में खोना, वो भी रहस्यमयी तरीके से डूब गया।
ओहो, तो शुरुआत वहीं से हो गई थी।
हाँ, फिर पति बिगपाचिन की अचानक मौत, इतनी त्रासदियों के बाद भी वो टूटती नहीं है बल्कि वो परिवार को जोड़े रखती हैं। वो एक शांत ताकत बन जाती हैं, परिवार का भावनात्मक और नैतिक केंद्र।
कमाल, ऐसी मजबूती। और फिर उनकी अगली पीढ़ी, उनके बच्चे।
हाँ, उनका बेटा फिलिपोस बिग अम्माची की ताकत के साये में पला बढ़ा लेकिन उस पर अवस्था का डर कुछ ज्यादा ही हावी लगता है।
मतलब वो माँ जितना मजबूत नहीं है?
ऐसा नहीं कि मजबूत नहीं, पर वो बहुत संवेदनशील है, लिखने का हुनर है उसमें, लेखक बनना चाहता है, लेकिन पानी का खौफ, वो डर उसे जकड़े रहता है। वो जैसे दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है, पुरानी परंपराएं, परिवार का इतिहास, और दूसरी तरफ आधुनिकता, उसकी अपनी ख्वाहिशें।
और ये अवस्था का बोझ, विरासत में मिला डर।
हाँ, उसे लगता है जैसे ये एक बोझ है जो उसे विरासत में मिला है। उसका हर फैसला, उसका पूरा जीवन इसी डर से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है।
उसके जीवन में प्यार भी आता है कहानी में।
हाँ, प्यार आता है एल्सी के रूप में। एल्सी छोड़ एक कलाकार है, एक अलग मिजाज की, आजाद ख्यालों वाली लड़की।
अच्छा, तो शायद वो फिलिपोस को इस डर से बाहर निकाल पाए।
एल्सी वाकई एक ताज़ी हवा की तरह आती है परमबिल में। वो प्रतिभाशाली है, उत्साही है, लेकिन उसकी यही बातें, उसकी आज़ादी, परमबिल की उस पारंपरिक दुनिया से टकराती हैं।
क्लैश तो होना ही था।
हाँ, फिलिपोस और एल्सी का प्यार गहरा है, इसमें कोई शक नहीं, पर अवस्था का डर, वो एक काले बादल की तरह उन पर मंडराता रहता है हमेशा।
और फिर अंजाम क्या होता है?
फिर वही होता है जिसका डर था, फिलिपोस की दुखद मृत्यु एक नाव दुर्घटना में डूबने से।
ओ नहीं, तो अवस्था ने उसे भी।
हाँ, और ये एल्सी के लिए एक ऐसा सदमा होता है कि वो जैसे टूटी जाती है गहरे दुख और शायद बच्चे के जन्म के बाद होने वाले डिप्रेशन, मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। वो अपनी नन्ही बेटी मरियम्मा को वहीं परमबिल में छोड़कर चली जाती है।
क्या, अपनी बेटी को छोड़कर?
हाँ, एल्सी की कहानी बहुत दुखद है, दिल तोड़ने वाली है। उसकी कला का दब जाना, उसका अनसुलझा दुख, वो कहीं खोसी जाती है।
और वो नन्नी बेटी मरियम्मा, उसका क्या होता है? कहानी का भविष्य जैसे उसी के हाथों में है ना?
है ना, बिल्कुल, कहानी का भविष्य वही है। मरियम्मा को पालती पोसती है उसकी दादी बिगम्माची।
अच्छा, बिगम्माची फिर से सहारा बनती है।
हाँ, तो मरियम्मा दादी की आस्था और समझ के साथ बड़ी होती है, लेकिन उसमें एक वैज्ञानिक सोच भी पनपती है। वो बहुत तेज है, इरादे की पक्की है। उसे अपने परिवार के साथ हुए इन हादसों की वजह जाननी है, क्यों होता है ये।
जिज्ञासा, चस्प। लेकिन कहानी में एक और धारा भी तो है। एक स्कॉटिश डॉक्टर का जिक्र था शुरू में, डिग्बी किलगौर, उसका क्या रोल है?
हाँ, डिग्बी, उसकी कहानी समानांतर चलती है। वो ग्लासगो का एक नौजवान होशियार डॉक्टर है, लेकिन अपने अतीत की कुछ उलझनों और एक स्कैंडल से बचने के लिए वो भागकर मद्रास आ जाता है।
स्कैंडल? कैसा स्कैंडल?
वो अपने मेंटर डॉक्टर क्लॉड की पत्नी सेलेस्टी के साथ उलझ जाता है, जिसका नतीजा होता है एक स्कैंडल और डॉक्टर क्लॉड की खुदकुशी।
ओह, ये तो गंभीर बात है।
हाँ, डिग्बी पर इस बात का गहरा बोझ आ जाता है, अपराध बोध। शुरुआत में वो थोड़ा अपने मतलब का सोचने वाला लगता है, लेकिन ये हादसा और भारत का अनुभव उसे बदल देता है।
कैसे?
इस अपराध बोध से उभरने के लिए या शायद प्रायश्चित करने के लिए वो कुष्ठ रोगियों की सेवा में लग जाता है, कोढ़ियों की सेवा, जिन्हें समाज ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। सेवा भाव,
यही हम देखते हैं उसका बदलना, एक थोड़ा खुदगर्ज नौजवान से एक हमदर्द समर्पित डॉक्टर बनना।
और आगे चलकर इसी सेवा भाव के रास्ते मद्रास में उसकी मुलाकात होती है मरियम्मा से, जो तब मेडिकल की पढ़ाई कर रही होती है।
अच्छा, तो यहाँ आकर दोनों कहानियां जुड़ती हैं।
हाँ, डिग्बी उसका मेंटोर बन जाता है, एक पिता जैसा गाइड।
तो ये कहानी कई दशकों में फैली है, बिगम्माची का आना, जोजो और बिगप्पाचिन की मौतें, फिर फिलिपोस और एल्सी की दुख भरी कहानी, डिग्बी का सफर और अब मरियम्मा की खोज। ये सब आखिर में जुड़ता कैसे है, क्लाइमैक्स क्या है?
कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है जैसे वक्त गुजरता है केरल में। वहाँ की जिंदगी की अपनी एक लय है, मानसून, फसलें, चर्च के त्योहार। लेकिन इन सब के बीच अवस्था का डर हमेशा एक काले साए की तरह बना रहता है।
हाँ, वो डर तो पीछा नहीं छोड़ता होगा।
बिल्कुल नहीं। फिलिपोस की मौत और एलसी का जाना कहानी को एक अंधेरे मोड़ पर ले आता है। ऐसा लगता है मानो यह दुख का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा।
लेकिन मरियम्मा है, वो उम्मीद की किरण है।
हाँ, मरियम्मा हार नहीं मानती। वो डॉक्टर बनती है, और सिर्फ डॉक्टर नहीं, न्यूरो सर्जरी में माहिर होती है।
अच्छा?
डिग्बी उसे रास्ता दिखाता है, हौसला देता है। वो ठान लेती है कि इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेगी, साइंटिफिक तरीके से।
अच्छा, तो विज्ञान का रास्ता चुनती है वो।
हाँ, यही कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। मरियम्मा से पारिवारिक किस्सों या आस्था पर नहीं रुकती। वो अपनी माँ एलसी की बनाई उन तस्वीरों को फिर से देखती है।
एलसी की तस्वीरें, उनका क्या लेना देना?
एलसी ने शायद अनजाने में ही परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में कुछ अजीब शारीरिक लक्षण या हाव भाव अपनी कला में दर्ज कर लिए थे। मरियम्मा उन पर गौर करती है। वो अपने मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल करती है और उसकी एक थ्योरी बनती है। ये कोई श्राप नहीं है,
तो फिर क्या है?
ये एक खानदानी बीमारी है, एक जेनेटिक गड़बड़ी, वंशानुगत विकार।
जेनेटिक?
जी, उस जमाने में ये सोचना।
हाँ,
और फिर वो एक ऐसा कदम उठाती है जो शायद उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था।
बहुत हिम्मत का काम।
क्या करती है वो?
वो परमबिल लौटती है।
हाँ,
और अपने पिता फिलिपोस की कब्र खुदवाकर उनके अवशेष निकलवाती हैं।
क्या कब्र खुदवाती है?
जी हाँ
सुनने में ही कितना नाटकीय लगता है ना।
जी।
वो उन अवशेषों की जांच करती है और उसे वही मिलता है जिसका उसे शक था।
क्या मिलता है?
पिता के कान के अंदर की हड्डियों में, मतलब इनर ईयर बोन्स में, एक शारीरिक विसंगति, एक बनावटी खराबी।
कान की हड्डियों में?
हाँ, ये एक ऐसी जेनेटिक गड़बड़ी थी जिसकी वजह से पानी में जाने पर या सिर को खास तरह से घुमाने पर इंसान को भयंकर चक्कर आते थे, जिसे वर्टिगो कहते हैं। वो अपना संतुलन खो बैठता था और नतीजा होता था डूबना।
अविश्वसनीय। तो दशकों पुराना राज, जिसे लोग श्राप या किस्मत का भेद समझते थे, उसका जवाब विज्ञान ने दिया। अवस्था एक, एक मेडिकल कंडीशन थी। डर की जगह अब वजह पता थी।
हाँ, ये सिर्फ एक मेडिकल रहस्य का सुलझाना नहीं था, बल्कि उस परिवार को उस अनजाने पीढ़ियों पुराने डर से आजादी मिलना था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
अच्छा, और क्या होता है?
मरियम्मा अपनी खोई हुई माँ एलसी को भी ढूंढ लेती है। एलसी अब एक आश्रम में रहती है, खामोश अपनी ही दुनिया में। उनका मिलना उसमें शब्द कम है, पर एक अधूरापन भरता है।
और बिगम्मा जी, वो ये सब देखती हैं?
हाँ, सोचिए बिगम्मा जी के बारे में। अपनी पूरी जिंदगी में इतने दुख देखने के बाद वो अपनी पोती को इस करार को तोड़ते हुए देखती हैं। विज्ञान के जरिए ही सही, पर उस डर से मुक्ति पाते हुए देखती हैं। परमबिल में आखिरकार एक तरह की शांति लौटती है।
वाह, क्या सफर है! दुख, रहस्य, विज्ञान, आस्था, परिवार, सब कुछ है इसमें।
ये कहानी सिर्फ प्लॉट या रहस्य के बारे में नहीं है, जैसा आपने कहा। इसमें कई परतें हैं, गहरे मतलब छिपे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे पानी का ही मामला लें।
हाँ, पानी वो तो शुरू से अंत तक है।
और वो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रतीक है। वो जीवन देता है, केरल की पहचान है, परमबिल की नस नस में है। लेकिन उसी परमबिल परिवार के लिए वो मौत का दूसरा नाम भी बन गया था। शायद किताब का करार यही था। पानी के साथ डर का जो रिश्ता बन गया था, उसे तोड़कर समझ का रिश्ता बनाना। जब मरियम्मा को वजह पता चल जाती है, तो डर की जगह समझ ले लेती है। करार बदल जाता है।
बहुत खूब कहा। और वो आस्था बनाम विज्ञान वाला पहलू, वो भी बहुत अहम है। क्या किताब किसी एक का पक्ष लेती हुई लगती है?
मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, बेगम्माची की गहरी आस्था उसे मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। वो उसकी ढाल है।
हाँ,
दूसरी तरफ मरियम्मा विज्ञान के जरिए जवाब ढूंढती है, तर्क का सहारा लेती है। लेकिन वर्गीज बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं कि ये दोनों रास्ते अलग होकर भी एक मंजिल पर पहुंच सकते हैं, या शायद एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं।
पूरक कैसे?
मरियम्मा की वैज्ञानिक खोज भी तो एक तरह की प्रार्थना ही है ना, अपने परिवार को दुख से निकालने की, उन्हें बचाने की प्रार्थना। तो वर्गीज दोनों का सम्मान करते हैं, किसी एक को दूसरे से कम नहीं दिखाते।
ये बहुत संतुलित नजरिया है। अच्छा, और परिवार, विरासत का बोझ, ये भी एक बड़ा थीम है इसमें।
हाँ बिल्कुल, अवस्था सिर्फ एक बीमारी नहीं है, वो किसी भी उस बोझ का प्रतीक बन जाती है जो हमें अपने पुरखों से विरासत में मिलता है। कोई अनकहा राज, कोई गहरा डर, कोई अधूरी कहानी, हर परिवार में कुछ ना कुछ होता है ऐसा, है ना?
हाँ होता तो है।
लेकिन कहानी ये भी दिखाती है कि पारिवारिक रिश्ते, खासकर औरतों की हिम्मत, जैसे बेगम्मा ची हैं, फिर मरियम्मा है, ये कितने मजबूत हो सकते हैं। ये एक तरह से मातृसत्तात्मक शक्ति को भी सलाम करती है।
और प्यार नुकसान और दुख से उभरने की जो जद्दोजहद है।
हाँ वो तो हर किरदार की कहानी का हिस्सा है। हर कोई दुख को अलग तरह से जीता है। बेगम्मा ची का वो शांत धीरज, एलसी का वो विनाशकारी तरीके से टूट जाना, मरियम्मा का दुख को एक मकसद में बदल देना, ये सब बहुत असली, बहुत मानवीय लगता है। और कहानी ये भी बताती है कि प्यार, चाहे वो परिवार का हो या रोमांटिक, वो दुख से उभरने में मदद जरूर करता है, भले ही जख्म पूरी तरह कभी न भरे।
वर्गीज की एक और खास बात का आपने जिक्र किया था, वो शरीर को भी एक कहानी की किताब की तरह देखते हैं। वो मेडिकल डिटेल्स, सर्जरी वगैरह का जिक्र जिस तरह से आता है।
हाँ वो अद्भुत है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर है, तो वो मेडिकल चीजों को बहुत अंदर से, बहुत इंसानी नजरिए से देखते हैं, जैसे शरीर अपने अंदर कई राज और कहानियां समेटे हुए है।
और सर्जरी,
सर्जरी करना उनके लिए मानो किसी होलीएस्ट ऑफ होलीज, यानी किसी बेहद पवित्र अंदरूनी जगह में दाखिल होना है, बहुत इज्जत और ध्यान से किया जाने वाला काम। ये विज्ञान को भी एक तरह की एक आध्यात्मिक गहराई देता है।
कमाल है, लिखने का अंदाज भी तो बहुत फैला हुआ महाकाव्यात्मक सा है। कई दशक, कई किरदार, अलग अलग जगहें, इन सबके बीच वो कैसे संतुलन साधते हैं?
हाँ वो तीसरे पुरुष यानी थर्ड पर्सन नरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे ऊपर से सब देख रहा है। इससे वो आसानी से समय, स्थान और किरदारों के विचारों के बीच घूम पाते हैं।
हाँ पाठक कहीं खोता नहीं है।
बिल्कुल, कहानी दो मुख्य धाराओं में बहती है, परमबिल परिवार की गाथा और डिग्बी की यात्रा, और आखिर में आके वो मिल जाती हैं। फिर प्रतीकवाद का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है, पानी का, हाथियों का जो केरल में ताकत और याददाश्त के प्रतीक माने जाते हैं, एलसी की कला का, ये सब कहानी को और गहरा बनाते हैं।
और केरल का माहौल, वो तो जैसे आंखों के सामने आ जाता है पढ़ते हुए, वो बारिश, वो हरियाली, वो चर्च के उत्सव।
हाँ वर्गीस का विवरण बहुत सजीव है, और मेडिकल बातें कहानी में ऐसे घुलमिल जाती हैं कि वो बोझ नहीं लगती, बल्कि रहस्य को और बढ़ाती हैं, उसे सुलझाने में मदद करती हैं।
कोई खास बात या कोई लाइन जो आपको पढ़ते हुए बहुत असरदार लगी हो?
दुनिया एक अस्पताल जैसी है, हम सब यहाँ मरीज हैं और हम सभी एक दूसरे के लिए मरहम भी।
वाह क्या गहरी बात है, पूरी इंसानी हालत का सार जैसे।
हाँ ये इंसानियत की गहरी समझ दिखाती है, और वो सर्जरी को होलीएस्ट ऑफ होलीज में प्रवेश मानने वाली बात भी मुझे बहुत छू गई, विज्ञान और आस्था का संगम जैसा।
सही है, तो ये किताब पढ़ने वाले पर कैसा असर छोड़ती है? इतनी लंबी कहानी है, कई बार दुख भरी भी है, भारी तो नहीं लगती?
ये अजीब है, कहानी इतनी बड़ी और फैली हुई है, कई पीढ़ियों की है, लेकिन साथ ही किरदारों से एक बहुत गहरा, एक अपनापन सा महसूस होता है। आप उनके दुख, उनकी खुशियों का, उनकी छोटी छोटी जीतों का हिस्सा बन जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली उस त्रासदी का बोझ आप महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही इंसानी हिम्मत, प्यार और जुड़ाव की ताकत भी दिखती है। खासकर बेगम्मा जी जैसी औरतें, उनकी सहन शक्ति, उनकी शांत ताकत दिल पर बहुत गहरा असर कर जाती है।
तो कुल मिलाकर अगर सार निकालना हो तो ये कहानी किस बारे में है? क्या ये विज्ञान की जीत है, या आस्था की, या परिवार की?
मेरे ख्याल से ये किसी एक की जीत के बारे में है ही नहीं, शायद ये जिंदगी की जटिलता के बारे में है। ये दिखाती है कि जवाब ढूंढने के लिए, सच तक पहुंचने के लिए हमें शायद दोनों की जरूरत पड़ती है, तख की भी और दिल की आवाज की भी, विज्ञान की भी और आस्था की भी।
संतुलन की बात।
हाँ ये अपने इतिहास को, अपनी जड़ों को समझने और उसे सम्मान देने के बारे में है, चाहे वो इतिहास कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो।
तो अंत में ये कहानी हमें क्या सिखाती है, या क्यों ये आज भी इतनी असरदार लगती है, क्या सबक है इसमें?
शायद ये इंसानी सहन शक्ति की एक बेमिसाल कहानी है, और ज्ञान की उस अथक खोज की कहानी है, जो अंधेरे से अंधेरे राज पर भी रोशनी डाल सकती है, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लगे।
और शायद ये भी कि प्यार, समझ और माफी में पीढ़ीगत जख्मों को भरने की, उस करार को बदलने की अद्भुत ताकत होती है।
बिल्कुल, समझ और माफी।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।